Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda
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 Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya
Chakshuron Militam Yena
Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamaiham Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vyasya Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare
Rama 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 Hare Hare Sri Chaitanya Mahaprabhu Rupa Goswami ko Shuddha Bhakti ke Lakshanon ko बताने के बाद उसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवतम और नारद पंचरात्र से और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को आगे ये शिक्षा दे रहे हैं कैसे ये जो भक्ति है ये प्रेम का रूप धारण करती है जैसे जैसे साधना भक्ति का कोई व्यक्ति पालन करता है उसे रति का उदय होता है रति का मतलब ही है कि भगवान के प्रति आसक्ति और ऐसी रति आसक्ति जब गाढ़ हो जाती है तो प्रेम का रूप धारण करती है और उसके आगे चैतन्य महाप्रभु और इस भक्ति का जो सूक्ष्मतर चीजें हैं उसको प्रस्तुत करते हैं रूप गोस्वामी को और वो कहते हैं कि प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है तो प्रेम जब आगे और गाढ़ हो जाता है गाढ़ होना का मतलब है कंडेंस्ड हो जाना और थिक हो जाना जैसे मिल्क है जो दूध है उसको जब आप उबालते रहोगे तो उसका थिकनेस बढ़ता है और उसका स्वाद भी बढ़ने लगता है तो उसी प्रकार से ये जो भक्ति है ये जो प्रेम के आगे के जो ये स्तरों का वर्णन किया है चैतन्य महाप्रभु ने जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर है कृष्ण भावना के तो उनमें वो कहते हैं कि स्नेह पहले तो भाव है फिर प्रेम प्रेम के बाद क्या होता है फिर स्नेह स्नेह को हमने कल चर्चा की थी स्नेह के बाद मान है मान के बाद प्रणय है प्रणय के बाद राग है राग के बाद अनुराग है तो अनुराग तक शायद हमने चर्चा की थी तो अनुराग के बाद क्या आता है भाव तो ये भाव क्या है ये आश्रय वृत्ति को ग्रहण करता है आश्रय वृत्ति को ग्रहण करने का मतलब है ये पूरी तरह से हृदय में ही केवल स्थित हो जाता है और ये हृदय में उत्पन्न होता है लेकिन बाहर कोई इसको जान नहीं पाता ये इस प्रकार का जो भाव का धरातल है और ये गाढ़तम अवस्था है कृष्ण भक्ति की क्या है ये गाढ़तम मीन्स गाढ़तम मीन्स क्या, कंडेंस्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार से ये जो भाव है, जो साधक है उसके हृदय में ये उत्पन्न होता है, लेकिन बाहरी रूप से कोई प्रयास करे तो कोई भी व्यक्ति उस भाव दशा को नहीं समझ पाता। और ये बहुत अधिक गाढ़तम अवस्था है कृष्ण प्रेम की। और इस भाव के बाद क्या है, अंतिम सर्वोच्च जो स्तर है वो है महाभाव। महाभावमयी श्री राधा ठाकुरानी, शास्त्र कहते हैं महाभावमयी कौन है, केवल श्रीमती राधा रानी। तो ये जो महाभाव का जो स्तर है ये केवल जो ब्रज देविया हैं, ब्रज की जो बालाएं हैं, ब्रज की जो वधु हैं, उनके हृदय में प्रकट होता है। और ये जो कृष्ण प्रेम की जो सर्वोच्च अवस्था है वो ये अवस्था है महाभाव। तो जो महेशिगन का मतलब है जो द्वारका की रानियां हैं, वो भी इस महाभाव को आस्वादन नहीं कर पाती। वो भाव तक जा सकती है लेकिन महाभाव केवल क्या है, ये गोपियों का या विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी का ये स्तर है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम की जो परिपूर्ण अवस्था है, तो कई आचार्य गणों ने इन सबको बहुत विस्तार से वर्णित किया है। तो चैतन्य महाप्रभु इन जो भाव है ये इनका वर्णन करते हैं। और आगे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐसे बीज इक्षुरस गुड़ खंड सार शर्करा सीता मिचरी उत्तम मिचरी आर। तो कहते हैं अबे जितनी चीजें हमने पढ़ी उसको हमें ये समझाने के लिए कि ये कितना अधिक कंडेंस होते जाता है और इसका स्वीटनेस बढ़ते जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे बीज मतलब किस चीज का बीज, इक्षु का मतलब है गन्ना। गन्ने का जो बीज है, बीज से गन्ना उत्पन्न होता है और गन्ने से क्या उत्पन्न होता है, रस। गन्ने से बीज नहीं, बीज से गन्ना और गन्ने से रस, जो जूस है। और रस से क्या उत्पन्न होता है, गुड़। मोलाशेस प्रभुपाद ने लिखा है, गुड़ से खंडसार, ड्राई मोलाशेस। खंडसार मीन्स खांड कहा जाता है इसको हिंदी में। और खंडसार के बाद क्या है, शर्करा का मतलब ही है शुगर, चीनी जिसको कहते हैं। शर्करा के बाद जो शर्करा के बाद क्या है, सीता का मतलब है कैंडी, शुगर कैंडी जिसे कहते हैं। और कैंडी के बाद क्या है, मिचरी, शायद मिचरी का मतलब भी है रॉक कैंडी, अभी पता नहीं इंग्लिश में क्या क्या उसके नाम है। और फिर उसके बाद है उत्तम मिचरी। उत्तम मिचरी की तुलना महाभाव से की गई है। तो ये उस गन्ने के जूस के डिफरेंट क्या है, फॉर्म है, जो आगे आगे जाके प्रगाढ़ हो जाते हैं और इनकी जो स्वीटनेस है वो बढ़ती चली जाती है। तो उसी प्रकार से ये जो तो गन्ना साधना भक्ति है, उसको हम ये करते हैं, अच्छी तरह से पालन करते हैं साधना का, तो धीरे धीरे ये जो भक्ति का जो रस है उसमें प्रगाढ़ता आती है और जो दिव्य और उन्नत जो स्वीटनेस है साधक उसको आस्वादन करने लगता है। यही सब कृष्ण भक्ति रसे रसताई भाव, स्थाई भावे मिले जदि विभाव अनुभाव। अब ये टेक्निकल शब्द है सारे, इन शब्दों को समझना ही अपने आप में भक्ति रसामृत सिंधु का जो सेकंड पार्ट है 19 अध्याय के बाद जो वर्णन है, इन सबका रूप को मुझे याद नहीं, या हिंदी होता, हिंदी बुक है किसके पास तो मुझे आज दे दीजिए, या अभी ला सकते हैं यदि आवश्यकता हो तो। मैं बड़ा कष्ट अनुभव कर रहा था सुबह से, कल से इन चीज को मुझे समझने के लिए कई घंटे बिताने पड़े। तो यही सब कृष्ण भक्ति रसे रस ताई भाव, यही सब कौन से, यही सब जो अभी हुए थे, अभी जिनके हमने चर्चा की, स्नेह मान प्रयन प्रणय, आगे क्या है, राग अनुराग भाव महाभाव, ये सब क्या है, यही सब कृष्ण भक्ति रसे रस स्थाई भाव, ये सब क्या है, स्थाई भाव है, जो हमने अभी डिस्कस किए थे। तो ये स्थाई भाव का मतलब ये है कि कृष्ण के प्रति स्थाई भाव को प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटेसी, स्थाई भाव। तो इंग्लिश में शब्द ही नहीं है इन सब चीजों के लिए, प्रॉपर वर्ड नहीं है। प्रभुपाद कई जगह लिखते हैं कि ये टेक्निकल चीजों को समझाने के लिए संस्कृत वर्ड ही एक्चुअली परफेक्ट शब्द है। तो ये सब कृष्ण भक्ति रसे रस स्थाई भाव, स्थाई भाव का मतलब ही है कि कृष्ण के प्रति जो रति है, जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, क्रम से प्रेम उत्पन्न करती है, इसी को क्या कहा गया है, स्थाई भाव।
ये श्रद्धा से पड़ जाती
है, हाँ, अधोश्रद्धा,
अधोश्रद्धा
यो। तो ये बहुत, वो बाकी चीजें हमने नहीं ली, फ्यूचर में हम एक मैप बना सकते हैं इसका। तो स्थाई भाव का मतलब ये है कि जो भगवान के प्रति रति है, आकर्षण आसक्ति है, वो क्रम से जब प्रेम में परिणत हो जाती है या प्रेम हो जाता है, तो उसको स्थाई भाव कहा गया है। और ये स्थाई भाव क्या होते हैं, जो साधक है उसके हृदय में स्थान ग्रहण करते हैं और राजा की तरह निवास करते हैं, ये जो स्थाई भाव है। और सुराजा एवं विराजते, और ये किस प्रकार के होते हैं, विरुद्ध एवं अविरुद्ध भाव होते हैं। तो उसका मतलब है कि जो भक्त है उसका प्रेम कृष्ण के लिए रहता है, लेकिन कभी कभी ये दो प्रकार की चीजें उसके प्रेम में उत्पन्न हो जाती हैं। ये क्या है, विरुद्ध भाव, और एक है अविरुद्ध भाव। मतलब विरुद्ध भाव का मतलब है कि जो भक्त है वो भर्सना करता है, भर्सना मतलब कि श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि आप क्या हो, लंपट हो, या आप बहुत कपटी आदि हो, तो एक प्रकार से क्या, एक प्रकार से विरोध, विरोध करता है भगवान के प्रति। लेकिन यह विरोध किस भावना से आया है, भगवान के प्रति प्रेम या आसक्ति की भावना से है। और जो अविरुद्ध भाव क्या है, कि जो भक्त हमेशा सोचता है कि नहीं, कृष्ण मेरे हैं और वे हमारे हैं, इत्यादि इत्यादि जब वो सोचता है, तो इसको विरोधी अविरुद्ध भाव कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो स्थाई भाव है, स्थाई भाव में भी यदि ये सब कृष्ण भक्ति रसे रस स्थाई भाव, स्थाई भावे मिले यदि विभाव अनुभाव, ये स्थाई भाव में क्या मिलने से, कितनी चीजें मिलने से, विभाव अनुभाव और दो चीजें हैं, सात्विक व्याभिचारी भावे रमिलने कृष्ण भक्ति रसहय अमृत आस्वादने। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो स्थाई भाव है, इनमें चार भाव मिलने से क्या करता है जो साधक है, कृष्ण भक्ति रस हय अमृत आस्वादने, तब वो रस का आस्वादन करता है, जिसको हम कहते हैं शांत रस, दास रस। हाँ, तो ऐसे नहीं कि ये रस बहुत चीप है, तब वो कहते हैं कि ये चार चीजें इस स्थाई भाव जो हमने डिस्कस किए, इनमें इन चारों का मिलन हो जाता है, तो जो साधक है कृष्ण भक्ति रस का, अमृत रूपी रस का आस्वादन करता है। तो स्थाई भाव में ये चार चीजें कौन सी है, चार चीजें, विभाव, पहला तो क्या है, विभाव। अभी हम आ रहे हैं ना आपको सीक्वेंस समझ में, एक तो स्थाई भाव है जिनको हमने कल चर्चा किया, उसके इनको स्थाई भाव कहते हैं। स्थाई भाव में ये चार भाव मिलने से क्या हो जाता है, रस का आस्वादन, रस जिनको पांच प्रकार के रस कहते हैं, तो आगे वो चर्चा आएगा। तो एक है विभाव, दूसरा है अनुभव, और तीसरा है सात्विक, सात्विक अष्टविकार हम कहते हैं ना, सात्विक अष्टविकार वो है जिसको कहते हैं सात्विक भाव, और चौथा क्या है व्याभिचारी भाव। व्याभिचारी भाव, व्याभिचारी या उसको संचारी संचारी भाव भी कहते हैं। अच्छा शब्द सुना दे रहा सात्विक व्याभिचारी भाव, अब सात्विक एंड व्याभिचारी स्थायी भाव प्रभुपाद ने उसको ट्रांसलेट
किया। जो विरुद्ध भाव विरुद्ध भाव बोले थे
वो स्थायी भाव ही है, लेकिन ये जो ये सारे स्थायी भाव है उनमें कभी कभी विरोध करता है जो साधक, और कभी अविरुद्ध बना रहता है।
जैसे भाव के दो पार्ट हैं।
नहीं, स्थायी भाव में ये दो चीजें हो जाती है इन छह सात चीजों के साथ, जैसे कभी राय ये करेगा मान प्रकट करेगा या कभी ये करेगा, तो दो चीजें बनी रहती है स्थायी भाव में। तो उसका विभाव क्या है कि विभाव वह है कि जो भक्त है वो कभी कभी क्या होता है, विभाव का मतलब ही है कि ये जो हमने वर्णित किया है आगे के जो रति है भाव है स्नेह है मान है प्रणय आदि ये सारे हैं, इन भावों को विविध प्रकार से कर देता है। विविध प्रकार से कर देता है का मतलब है कि जैसे उसका उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कहते कि जैसे यशोदा है, यशोदा माता का प्रेम कृष्ण के प्रति है, लेकिन कभी कभी वो क्या करती है उसको डंडे से मारती है या फिर भगवान को बांध देती है। हाँ, मतलब ये विविधता को प्रकट करता है। हाँ, इनमें विविधता को प्रकट करता है, किनमें, ये जो आगे के जो स्थायी भाव हमने कल डिस्कस किए उसी को ही ये कहा गया है, विभाव कहा गया है। तो फिर जो ये तो वात्सल्य का हो गया, साख्य माधुर्य आदि का वो अलग अलग प्रकार से उसमें विविधता होती है। तो ये जो विभाव है उसके दो प्रकार है। विभाव के दो प्रकार क्या है, एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। एक आलंबन है और दूसरा उद्दीपन है। तो आलंबन के भी दो प्रकार रूप गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा आलंबन के दो प्रकार। तो आलंबन का पहला प्रकार क्या है, एक है विषय आलंबन और दूसरा है आश्रय आलंबन। विषय विषय इसको विषय विषय आलंबन और आश्रय आलंबन। तो विषय आलंबन का मतलब है, आलंबन का मतलब है आधार या फिर शेल्टर। तो जो हमारी भक्ति लता बढ़ रही है उसका विषय आलंबन का मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ लव। हमारे भक्ति लता के ऑब्जेक्ट कौन है, कृष्ण है। तो विषय आलंबन का मतलब है ये जो लता है ये जो क्रीपर है दो जगहों में उसने टिकी हुई है, एक तो वहां कृष्ण के चरणों का उसने शेल्टर लिया है पकड़ा है उस क्रीपर ने, और दूसरा आलंबन क्या है आश्रय आलंबन। तो आधार, इसका आधार कहां है उस लता का, भक्त का जो हृदय है। तो इसी को दो चीजें कि उसका ऑब्जेक्ट ऑफ लव कृष्णा है और जो आधार है या आश्रय है वो कौन है, भक्त है, उसको ये आश्रय आलंबन कहा गया है। तो विषय आलंबन का मतलब ही है कि प्रेम के विषय कौन है, कृष्ण है, और प्रेम का जो आश्रय है उसको कहा गया है भक्त। कभी कभी उल्टा हो जाता है कि जो भगवान है वो आश्रय आलंबन बनते हैं और भक्त क्या बन जाता है, विषय आलंबन। चैतन्य महाप्रभु है मतलब भगवान भक्त से जब प्रेम करने लगता है तो ये चीज उल्टी हो जाती है। हाँ, तो ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा हम थोड़ा समझ लेते हैं तो धीरे धीरे कुछ चीजें हमारे समझ में आ सकती हैं। हाँ, तो ये हम समझ गए कि विभाव में दो प्रकार है, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। तो उद्दीपन क्या है कि चीजों को देखने मात्र से भक्त के भावों को जो बढ़ा देता है उसको क्या कहा गया है, उद्दीपन। भौतिक उदाहरण क्या देते हैं प्रभुपाद कई बार कि जैसे माँ है अपने पुत्र का शूज देखती है घर में, बल्कि वो बहुत दूर है, कहाँ है, दिल्ली में है, इधर उधर है, लेकिन देखने मात्र से जो पुत्र आदि है उनके प्रति प्रेम या आसक्ति भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से जो ये उद्दीपन है, भक्त कृष्ण के गुणों को सुनता है या फिर उनके सौंदर्य को देखता है, या भगवान के मुस्कुराना जो स्माइलिंग है उसको देखता है, भगवान की अलग अलग चेष्टाएं हैं, या भगवान का वेशभूषा आदि को देखता है, हाँ ये चीजें क्या है, उद्दीपन का काम करती है, भक्त को उद्दीपित करती है, मतलब उनके भाव बढ़ने लगते हैं, अधिक होने लगते हैं। तो क्या क्या चीजें उद्दीपित करती है भक्त को, जैसे भगवान के शरीर का सुगंध है, जैसे हम सेंट भी लेते हैं मंगल आरती में, ये भी क्या है, भगवान के शरीर का सुगंध है जिसको हम ले रहे हैं। या फिर जो भक्तगण देखते हैं कि कृष्ण श्रृंग धारण कर रहे हैं, नुपुर उनके चरणों में है, बांसुरी है, तुलसी को देखने मात्र से उद्दीपित हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के लीला में आता है, जो मुकुंद वैद्य थे नरहरि सरकार के पिता शयन, जब वो श्रीखंड ग्राम में थे तो वहां के एक राजा को वो गए थे ट्रीटमेंट करने के लिए, तो राजा का सेवक भगवान का जो मयूर पिच्छ है उसको ऐसे फैन कर रहा था, तो मुकुंद ने जैसे देखा तो उनको उद्दीपन हो गया, मतलब कृष्ण को वो मोर पंख खुद को देखने मात्र से कृष्ण का स्फुरन हो गया और वो मूर्छित होके गिर पड़े। तो इससे क्या कहते हैं कि उद्दीपन का मतलब है कृष्ण की उन चीजों को देखने मात्र से या भक्तों के बारे में सुनने मात्र से हृदय में भगवान के लिए जो भाव है या प्रेम है वो जब बढ़ता है, उस चीज को क्या कहते हैं, उद्दीपन। तो इस प्रकार से, या फिर जो तदवासर आदय, तदवासर का मतलब है भगवान के जो दिन है, एकादशी है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, गौर पूर्णिमा है, ये दिन आते ही भक्त के हृदय में आकर्षण प्रेम और भाव अधिक बढ़ने लगता है, हाँ तो इसको उद्दीपन कहते हैं। हाँ तो ये चार चीजें मिलने से, तो अभी ये कौन सी चीजें स्थायी भाव में मिलेगी, चार, एक तो विभाव, विभाव का मतलब ही है जो हमने सुना, विभाव के दो प्रकार हैं, विभाव में दो विभाजन है, एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन, और आलंबन के दो विभाग हैं, वो कौन से हैं, विषय आलंबन और आश्रय आलंबन। तो और दूसरा विभाग क्या है, अनुभाव। एक तो विभाव हो गया, स्थायी भाव में चार चीजें मिलानी है हमें, तो उससे वो मिलने से फिर रस बनता है जिसको हम पांच रस कहते हैं। हम वो भाव शब्द यूज करते हैं कि शांत भाव, शास्त्र कहते हैं भाव शब्द प्रॉपर नहीं वहां यूज करना, क्या है प्रॉपर शब्द, रस। तो वो रस कब बनता है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि शांत शांत रति क्या है, फिर वो रति जब इन चार चीजों में मिलती है तो उससे रस बनता है जिसको फिर हम कहते हैं ये भक्त शांत रस में है, ये भक्त वात्सल्य रस में है, ये भक्त दास्य रस में है। तो ये चार चीजें मिलेगी, महाप्रभु कहते कृष्ण भक्ति रस हय अमृत आस्वादन है, तब उस अमृत रूपी रस का भक्त क्या करता है, आस्वादन करता है। लेकिन ये चार चीजें मिलने बहुत आवश्यक है, इसलिए एक तो विभाव है, और किस में मिल रही है ये चार चीजें,
मिल रही है
स्थायी भाव में। स्थायी भाव कौन से है, सारे जो कल हमने डिस्कस किए थे, सात आठ जो है, हाँ तो वो उसको स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव में अभी एक के बारे में हमने सुना, क्या मिला उसमें, विभाव। अभी दूसरा क्या है, अनुभाव। अनुभाव कि चित्त में ऐसा भगवान के प्रति भावोन्माद जागृत होता है या प्रेम बढ़ जाता है कि वो बाहर भी प्रकट होने लगता है उसके शरीर के आचरण से, तो इसको क्या कहा गया है, अनुभाव। हाँ पता नहीं अभी मैं जो समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ आपको, डिफिकल्ट है बाहर में प्रकट होता है, तो उसका उदाहरण देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु का, ये जो सेकंड चैप्टर है जिसमें कहा है अनुभव के प्रमुख उदाहरण। अनुभव के प्रमुख उदाहरण क्या है जो दिए गए हैं, 13 है, तो ये चैप्टर ही है, देखो एक एक चैप्टर एक एक चीज को डिफाइन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में। जब अभी अनुभव है तो अनुभव के लक्षण, हाँ इतना सिस्टमेटिकली रूप गोस्वामी ने प्रेजेंट किया है। हाँ तो मेरे पास ये नहीं था, इसलिए मैं 2-3 दिन से बहुत कष्ट महसूस कर रहा था। विभाव, विभाव का कि ये जो स्थायी भाव है उनमें विविधता को प्रकट कराता है, इसको विभाव कहते। जैसे मैंने यशोदा का उदाहरण बताया, तो यशोदा क्या करती है, वो तो वात्सल्य भाव में है, लेकिन कभी कभी ये आ जाता है कि वो कभी कृष्ण को बांध देगी, कभी पिटाई करेगी, तो ये अलग अलग भाव को जागृत कराता है या विविधता को ला देता है, इसको ही विभाव कहा गया है। हाँ, वैरायटीज इन 5 चीजों में, ये जो पिछले जो स्थायी भाव में विविधता ला देता है, जिसको क्या कहा गया है, विभाव कहा गया है, विविध प्रकार से कर देता है, प्रेम को, स्नेह को, मान को, प्रणय आदि को। तो ये अनुभव के क्या लक्षण है कि जो चित्त में क्षोभ जागृत करता है, क्षोभ का मतलब ये है कि वो बाहर प्रकट हो जाता है, उसके बॉडी से दिखाई देता है। वो क्या चीजें हैं 13, तो यहाँ वर्णन करते हैं। नाचना, नाचता है कृष्ण के लिए, क्या करता है, ये अनुभव का एक ये है, नाचना, भूमि पर लौटने लगता है, लोटपट हो जाता है, हाँ अनुभव, उच्च स्वर में गाता है भगवत प्रेम के कारण, और शरीर को फैलाता है। शरीर को फैलाने का मतलब ये है शरीर टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, या जोर से चिल्लाता है अचानक हरि बोल
हरि बोल,
या फिर कई चीजें। इसका मतलब यह नहीं कि हम नाच रहे तो हम अभी अनुभव में हैं, नहीं, हाँ ये तो हम साधना कर रहे हैं। और क्या है, अंगड़ाई लेता है, या फिर तेजी से सांस लेने लगता है, और दूसरों की परवाह नहीं करता कि बाहरी लोग मुझे क्या कहेंगे, लोगों की परवाह नहीं करता, वो अपने भक्तिमय कार्यों में लगा रहता है। जैसे भक्त वो दूसरों की परवाह नहीं करते, वो समाज क्या कहेगा मुझे, ये क्या होगा, क्योंकि वो तो भगवान से इतने अधिक प्रीति है तो कि ये भौतिक चीजों से वो टोटली ऊपर हो जाते हैं, या लार गिरता है, या उन्मत्त की तरह हंसने लगता है, उसका सिर चकराने लगता है, हाँ घूमने लगता है, और हिचकी लेता है। तो ये सब चीजें कई बार चैतन्य महाप्रभु के जो जगन्नाथपुरी की लीलाएं हैं उनमें ये सब आप हम पढ़ते हैं कि महाप्रभु ने इन सब चीजों को कैसे प्रकट किया, इन भावों को। तो इस प्रकार से ये अनुभव है, और अनुभव के बाद क्या है, सात्विक भाव, जिसको हम कई बार सुनते हैं कि भक्त में अष्ट सात्विक विकार क्या हो गए, जागृत हो गए। सुना है ना आपने ये बात कई बार कि अष्ट सात्विक विकार जागृत हो गए। तो अष्ट सात्विक विकार जागृत होने का मतलब है कि जो भक्त है वो साक्षात कृष्ण को देखकर या उनके बारे में सुनकर या परंपरा से सुनकर अनुभव करता है, और जब ये सब करके अनुभव करके उसका जो चित्त है कृष्ण के संबंध में जो प्रेम है उससे क्या हो जाता है, आक्रांत हो जाता है या पिघलने लगता है चित्त, या दूसरी भाषा में उसको कहा गया है कि उसका हृदय प्रेममय हृदय हो जाता है पूरी तरह से, तो उसी को एक क्या कहा गया है, सात्विक भाव, कि उसका हृदय पूरी तरह से प्रेम में भरा रहता है। कई बार एक जैसे ही लग रहे हैं हमें कई डेफिनेशन, लेकिन उनकी जो गाढ़ता है वो डिफरेंट है, गाढ़ता अलग अलग है। तो इसी को ही जिसका प्रेममय हृदय बना है पूरी तरह से, ऐसे हृदय में जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो हलचल मचती है, उसी को क्या कहा गया है, अष्ट सात्विक विकार। हलचल का मतलब है जैसे वेव्स आना, वेव्स आते समंदर में, तो वैसे ही प्रेम रूपी जो सागर हृदय में है उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेव्स आती हैं, तो उन्हीं को चैतन्य महाप्रभु या रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि सात्विक भाव है, अष्ट सात्विक जो विकार हैं। तो ये तो काफी वर्णन है। भक्ति रसामृत सिंधु में, इसमें तो डिटेल डिटेल है, मैंने पढ़ा नहीं है सब डिटेल। तो ये क्या है, ये अष्ट कौन कौन से है, स्तंभित होना, स्तंभित स्टंड हो जाना, भक्त स्तंभित हो जाता है मतलब वाणी रुक जाती है या गति रुक जाती है या फिर जड़ जड़ता के समान बस बैठा है, बोल भी नहीं रहा है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उसका इतना प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो रहा है। उन सबके उदाहरण भी दिए हैं इन सब में, तो मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा उदाहरण हर एक के, क्योंकि ये बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है हर एक, जो विभाव अनुभाव सात्विक भाव, तो सात्विक भाव में भी जो अष्ट सात्विक विकार है, तो हर एक विकार का गोदिया के उद्धव कैसे वृंदावन गए। और दूसरा क्या है, स्वेद आ जाना, स्वेद स्वेद का मतलब है पसीना आदि आ जाना, भक्त को बहुत अधिक पसीना, रोमांचित हो जाना, रोमांच रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो, इसको क्या कहा गया है, अष्ट सात्विक विकार ये गुरु में प्रकट होते हैं, रोमांच
सुना
आप गाते हो ना, रोमांच कंपा अश्रु तरंग भाजो, रोमांच कंप कम कपी होना, वो अष्ट सात्विक विकार का एक भाव है। स्वर कंपन, स्वर कंपन का मतलब ही है स्वर भेद, मतलब उच्चारित नहीं कर पाता, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो जगन्नाथ का नाम नहीं उच्चारण कर पाते थे, इतना भावावेश में आते थे, वो कहते ज ज ग ग ज ज ग ग ज ज ग ग ऐसा काम करते थे जब वो रथ यात्रा में होते थे। तो इसको क्या कहा गया है, स्वर कंपन या स्वर भेद। और कंपन का मतलब है शरीर में कम कपी होना, ठंड के कारण नहीं स्वाभाविक। इसका उदाहरण मैं पढ़ता हूं, जब कृष्ण जी शंखचूड़ को पकड़ना चाह रहे थे तो राधा रानी भय के मारे कांपने लगी, शंखचूड़ आया था ना जो असुर, इसी प्रकार का शरीर कंपन नकुल के छोटे भाई सहदेव में प्रकट हुआ था। जब शिशुपाल बुरी तरह से भगवान की निंदा कर रहा था तो सहदेव क्रोध के मारे कांपने लगे थे। तो इसी को क्या कहा गया, अष्ट सात्विक विकार। राधा रानी में भी शोक के कारण शरीर कंपन प्रकट हुआ था, उन्होंने कांपते हुए एक गोपी से कहा, इस निष्ठुर बालक से हंसी मजाक मत करो, इसे मेरे पास मत आने दो, क्योंकि ये हम सबों को शोक का कारण बना रहता है। हाँ, तो कंपन शरीर कंपन होना। और आगे क्या है, वैवर्ण्य, वैवर्ण्य का मतलब ये शरीर का रंग बदलना, शरीर का वैवर्ण्य, वैवर्ण्य वैवर्ण्य को, वैवर्ण्य मीन्स शरीर का रंग बदलना। जैसे ये कंस में भी प्रकट हुआ था, जब कंस की यज्ञशाला में कृष्ण तथा बलराम उपस्थित थे तो कंस के शरीर का रंग बदल गया था इसी प्रकार जब इंद्र ने देखा कि कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं तो उसके मुख का रंग बदल गया। जब ये रंग परिवर्तित अत्यधिक हर्ष के कारण होता है तो लालिमा आ जाती है, किंतु ऐसा रंग परिवर्तन दुर्लभ होता है, अतएव श्री रूप गोस्वामी इसका आगे वर्णन नहीं करते। और एक क्या है, आश्रु, आश्रु प्रवाह होना, आश्रु निकलने लगे लगना। जैसे रुक्मिणी आदि सत्यभामा अत्यधिक स्नेह के कारण भगवान से आसक्ति के कारण आश्रुपात किया करती थी। और आगे क्या है, अष्ट सात्विक में प्रलय, प्रलय का मतलब ही है मूर्छा आ जाना, मूर्छित हो जाना। तो इस प्रकार के ये जो सात्विक भाव हैं जिनको ये विभाव अनुभाव और सात्विक भाव, और सात्विक भाव के आगे क्या है, व्याभिचारी, सात्विक व्याभिचारी भावेर मिलने। महाप्रभु कहते कि ये चार भाव मिलने होंगे, हाँ किसमें, स्थाई भाव में। तो ये मिलने से क्या होगा, रस का, अमृत रूपी रस का जो भक्त है वो आस्वादन करता है। तो व्याभिचारी भाव क्या है, हाँ, व्याभिचारी भाव वो है कि हाँ कि इन भावों में कभी कभी छोटे बड़े रूप में ये बीच बीच में व्याभिचारी जो भाव हैं वो उठने लगते हैं और इनका जो तुलना है इनको 33 प्रकार के व्याभिचारी भाव कहे गए हैं या संचारी भाव, मतलब इन जो आगे के जो स्थायी भाव हैं उनमें कई कभी कभी ये 33 प्रकार की चीजें छोटे बड़ा रूप धारण करती हैं, बहुत रेयरली, जैसे वेव्स में कभी कभी भवर आ जाना आदि। हाँ, तो ये जो होता है उसको व्याभिचारी भाव कहा गया है, जिसको रूप गोस्वामी संचारी भाव कहते हैं, मतलब संचरण करते हैं इधर उधर बीच बीच में प्रकट हो जाते हैं। हाँ, तो इनको 23 प्रकार से वर्णन किया है, ये बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है लेकिन मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि ये 23 चीजें क्या है, लेकिन आप बाद में कभी भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ेंगे तो आपको एक फ्लो मिलेगा। तो वो 23 क्या है? निराशा, विषाद, दैन्य, तो हर एक चीज को रूप गोस्वामी ने बहुत विस्तार से समझाया है। दैन्य का ह्यूमिलिटी मतलब क्या है, दैन्य क्या है वास्तव में, ग्लानी, श्रम, मद, गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, विस्मृति, व्याधि, मोह, मृत्यु, आलस्य, जड़ता, लज्जा, कोपन, स्मृति, वितर्क, चिंता, मति, धृति, हर्ष, उत्सुकता, उग्रता, अमर्ष, असुया, दृष्टता, सुप्ति, निद्रा एवं बोध। हाँ, तो ये जो व्याभिचारी भाव है ये चार चीजें जब मिल जाती हैं स्थायी भाव में, हाँ, तो क्या हो जाता है, फिर जो भक्त है अमृत रूपी जो रस है, रसामृत, इसलिए तो इसका नाम क्या है, भक्ति रसामृत। हाँ, ये अमृत तभी टेस्ट होगा जब ये चीजों, एक्चुअली ये जो नाम है भक्ति रस अमृत सिंधु, ये हर एक शब्द का रूप गोस्वामी ने डेफिनेशन दिया है और पूरा ग्रंथ इसमें हर एक शब्द में भरा हुआ है। हाँ, भक्ति, तो भक्ति का क्या हमने वो उत्तमा भक्ति, रसा का वर्णन, भक्ति रस, ये रस अमृत कब होता है जो अभी हम सुन रहे हैं, अमृत तभी होता है। फिर ये क्या है, ये कोई सरोवर नहीं है, ये क्या है, सागर है। तो इस प्रकार से जो रूप गोस्वामी है वो कहते हैं कि ये स्थायी भाव में ये चार भाव मिलेंगे तो जो साधक है वो भक्ति रस का अमृत के समान है जिसका आस्वादन कर पाएगा। तो उसको और थोड़ा उदाहरण के साथ समझाते हैं। ऐच्छेदादि सीता घृता मरीच कर्पूर मिलने रसाला है अमृत मधुर। तो अभी उसकी तुलना करते हैं कि उसमें क्या क्या मिलने से ये हो जाएगा, अमृत होगा। तो कहते कि दधि, हाँ, जैसे कोई बिल्कुल दूध है जो उबाला हुआ है और ऊपर बहुत अच्छा वो आया है, क्या कहते, मलाई आई है, हाँ, ऐसे दधि, और उसको आप दही जमा देते हो और उसमें क्या डाल देते हो, सीता, सीता का मतलब है शुगर, हाँ, दही में शुगर और उसमें ब्लैक पेपर आदि डालते हो, क्लैरिफाई बटर घृत कहा गया है, थोड़ा डालते हो और कैम्फर डालते हो, तो इस कपूर, कर्पूर, खाने वाला कर्पूर होता है ना, कई बार आप देखेंगे इस्कॉन में जब चिड़ा दही फेस्टिवल होता है रघुनाथ दास गोस्वामी का, तो चिड़ा आदि में ये डाला जाता है थोड़ा। तो कहते इन चीजों को मिलने से जो टेस्ट आता है वो अमृत का टेस्ट है। हाँ, एक डिश है। हाँ, इसको ये पैलेटेबल एज अ स्वीट नेक्टर, तो इसको मिलने से जो रस आस्वादन होता है वो अमृत के समान है। तो ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से उन स्थायी भावों में इन चीजों का मिलना, दही, सीता, घृत, मरीच, कर्पूर, हाँ, ऐसे दही, दही में ये चार चीजें मिलती हैं। सीता, सीता मीन्स शुगर, और घृत, घृत का मतलब है क्लेरिफाई, बटर मीन्स घी, और मरीच मीन्स ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर और कर्पूर, ये मिलने से क्या होता है, अमृत के समान टेस्ट आता है। तो उसी प्रकार से स्थाई भावों में विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी, संचारी भाव, ये मिलते हैं तो जो भक्त है वो रस को अनुभव करता है भक्ति में। भक्त भेद रति भेद पंच परकार, शांत रति दास रति सख्य रति आर, वात्सल्य रति मधुर रति यही पंच विभेद, रति भेदे कृष्ण भक्ति रसे पांच भेद। तो अभी यहां वो बता रहे हैं भक्त भेदे रति भेदी भेद, तो जितने भक्त हैं, कितने भक्त हैं, असंख्य भक्त हैं, और असंख्य भक्तों का भगवान के साथ असंख्य रूपों में, असंख्य रसों में क्या है, संबंध है। असंख्य रति, रति का मतलब ही है आसक्ति। हम कहते, मैंने जैसे कल भी कहा, रति का मतलब ही है आसक्ति, या अनुरक्ति हम कहते हैं, ये बहुत भक्त रत हो गया है एक कार्य में, या अनुरक्त हो गया उसके ऊपर, हाँ, किसी और के ऊपर, तो इसको क्या गया है, रति। हाँ, तो ये जो रति है भक्त भेदे, अलग अलग भक्तों का अलग अलग क्या है, आसक्ति है भगवान के प्रति, लेवल क्या है, अलग अलग है। तो भक्त भेदे के कारण क्या है, रति भेद है, और ये रति भेद कितने प्रकार के हैं, पांच प्रकार के। तो पांच प्रकार के रति भेद कौन कौन से हैं, हाँ,
शांत
भेद,
भेद, हाँ, शांत रति, फिर दास रति, सख्य रति, वात्सल्य रति और माधुर्य रति। तो ये जो रति है, इनमें जब ये चार चीजें मिलती हैं, कौन सी चार चीजें मिलती हैं, जो अब हम अभी हमने देखी, तो फिर क्या हो जाता है, हाँ, वो रस बन जाता है, हाँ, चार चीजें मिलने से, ये रति में। तो अभी पहले हम रति को सुनते हैं, ये रति एग्जैक्टली क्या चीज है, और फिर वो चार चीजें इनमें क्या क्या मिलता है, हर एक रति में क्या क्या ऐड होता है। शांत रति है, पहले तो हम शांत रति समझेंगे, तो आगे हम समझेंगे कि शांत रति ये है, तो इनमें ये चार चीजों में से क्या क्या मिलेगा, तब वो क्या बनेगा, शांत रस बनेगा। हाँ, रति मतलब अटैचमेंट, अभी रस नहीं है, हाँ, तो वो रस कब कैसे उत्पन्न होगा, कैसे अनुभव होगा, वो जो चैतन्य महाप्रभु या रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में समझा रहे, तो बड़ा ये साइंस है, हाँ, टफ साइंस है हाँ, कितना डीप साइंस है एक्चुअली, हाँ, तो इसके लिए सोचना होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग साधना की आवश्यकता है, हाँ, क्योंकि साधन भक्ति, जब हमने अभी पीछे कहा कि साधन भक्ति से ये रति होगी, हाँ, हाँ, तो ये बड़ा
रति के बारे में तो डिस्कस नहीं किया,
नहीं, रति का मतलब ये आसक्ति,
अटैचमेंट,
रति का रति एक ये अटैचमेंट कहा गया है, रति या रुचि आ गए जो भी है, तो रति का मतलब ये आसक्ति, जो एक वर्ड यूज किया है हर चीज को बताने के लिए।
तो ये हाँ। पांच भेद जो शांत रति, दास रति, ये तभी आते हैं जब इन चारों चार भाव मिलते हैं,
विवाह, वो अभी नहीं, नहीं, ये वो जब इस शांत रति में मिलेंगे तब रस बनेगा, ये तो इंडिपेंडेंट है शांत रति, अभी अभी क्या है, हाँ, एक एक में चार चीजें मिलेंगी इस रति में, ये रति डिफरेंट चीज है, भक्त भेद है रति भेद, यहाँ कहा गया है रति भेद। रति का मतलब अटैचमेंट, आप सबसे पहले समझे, रति का मतलब क्या है, आसक्ति या अनुरक्ति भगवान के प्रति। कौन से प्रकार की अनुरक्ति है, कुछ शांत शांत प्रकार की अनुरक्ति है, या मित्रता से वो अनुरक्त हो गया है, हाँ, लेकिन ये अनुराग है, लेकिन इसमें यदि ये चार चीजें नहीं मिलेगी तो जो रस है ये अनुराग है, उससे जो उत्पन्न होने वाला रस है वो आस्वादन नहीं करेगा। समझ में आया अभी, अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट,
आसक्ति जो है ये एक स्थाई भाव का ही एक वो है, उसमें भी आसक्ति आता है,
नहीं इसमें नहीं आता,
ये जो रति है प्रेम से रति है ना,
कौन सी? नहीं नहीं ये जो
रति,
ये वो जो श्रद्धा से आगे आता है ना रति, क्या है वो उसमें रुचि, उससे आगे इन सब, ये जो छह चीजें हैं, कितने है? छह सात चीजें नहीं, नौ चीजें हैं, हमने तो भाव से शुरू किया था, ये चीजें ही रति हैं, इनको ये करते हैं जिसको स्थायी भाव कहा गया है। इन चीजों से जो भक्त के प्रति जो आसक्ति है, इसी को क्या शब्द यूज किया है? रति। रति मीन्स एक अटैचमेंट। अभी ये सारे हैं तो उन भक्त में क्या है? वो अटैचमेंट है भगवान के लिए। तो वो अटैचमेंट किस रूप से? अलग अलग रूप से अलग अलग भक्तों का अटैचमेंट है। सख्य के रूप में है, या फिर माधुर्य के रूप में है, वात्सल्य के रूप में है। कृष्ण के प्रति प्रेम का आसक्ति, क्योंकि ये सब क्या है? प्रेमी भक्त हैं जिनमें ये हो रहा है। ये कौन से भक्त हैं? प्रेमी भक्त हैं। तो ये प्रेम को ही आसक्ति कहा गया है, या अनुरक्ति। और जो पांच प्रकार से हो जाती है, जिनको हमने अभी कहा, ये पांच प्रकार की जो अनुरक्ति है, और इस को तो फिर पहले है शांत रति। शांत रति क्या है? कौन भक्त शांत रति में है? एक प्रकार से जो विषय आकर्षण पूरी तरह से जीरो, क्या है? हम सोचते शांत, अभी मैं कहीं हम इल्यूजन में भक्त कहते, मैं अभी दास भाव में हूँ, और विषय आकर्षण पूरा भरा पड़ा है, अटैच सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो जो शांत रति है, अब वो क्या है कि विषय आकर्षण पूरी तरह से छूटा हुआ होता है, और मन आनंद की स्थिति में हमेशा बना रहता है। कृष्ण भक्ति स्वर्ग मुक्ति नरक करिमानी। जो शांत रति में है वो कृष्ण भक्त है, जो क्या है? स्वर्ग और मुक्ति, इसको क्या मानता है? तुच्छ, नरक मानने लगता है। कृष्ण में अनुरक्त हो जाता है, उसके बुद्धि की निष्ठा कृष्ण में हो जाती है, और वो पूरी तरह से कृष्ण के पर्सनल फॉर्म के प्रति ज्यादा ये भी नहीं है, और पूरी तरह से इम्पर्सनल फॉर्म के प्रति उसका आकर्षण नहीं है। तो ये जो शांत रति है उसमें दो चीजें प्रधान है। ये क्या है? पूर्ण निष्ठा होती है। उसका बुद्धि क्या है? पूर्ण निष्ठा। निष्ठा को क्या कहेंगे? फर्म फेंथ होता है भगवान के प्रति, और भोग के प्रति त्याग की भावना होती है पूरी तरह से। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसको कहते हैं कि ये भी क्या है? नीचे का है। लॉर्ड चैतन्य ये देने नहीं आए, शांत रति एक प्रकार से देने नहीं आए, चार ही भावे। हाँ, महाप्रभु ने कहा चार जो भाव है वो मैं देने आया हूं। तो ये क्यों नहीं महाप्रभु चाहते थे? क्योंकि ये ममता गंध वर्जित है। ममता का मतलब है भगवान से कोई पर्सनल आदान प्रदान नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, सेवा नहीं करना चाहते। जो शांत रति में है वो भगवत सेवा नहीं, वो मानते नहीं कृष्ण से कोई जो संबंध है, संबंध से रहित होते हैं। तो इसके उदाहरण दिया गया है कि जो मतलब इनमें सेवा वासना नहीं होती। इनका उदाहरण क्या है? चार कुमाराज हैं, या फिर नव योगेंद्राज हैं। शुकदेव गोस्वामी इसी में थे सबसे पहले, जो माँ के गर्भ से जन्म लिए और वो दौड़े, तो ये इस रति में थे। बाद में वो चाहे जिस भी रति में आए होंगे तो। लेकिन दूसरा क्या है? दास्य रति। तो दास्य रति, जैसे जैसे हम आगे रति में जा रहे तो वो जो पीछे की जो चीजें हैं वो अगले रति में क्या है? इंक्लूड है, वो चीजें इंक्लूड है। तो दास्य रति का मतलब ही है भगवान के रूप के प्रति आकर्षण, फॉर्म पर्सनल, उनके रूप के प्रति आकर्षण। और जो भक्त है अपने आप को क्या मानता है? न्यून, हीन मानने लगता है। हीन को मतलब निम्न, नीच, लोअर, क्या है? मैं तो बहुत इनसिग्निफिकेंट, सही वर्ड है, इनसिग्निफिकेंट मानने लगता है। और यही भावना रखता है कि कृष्ण मेरे ऊपर अनुग्रह करे, मैं अनुग्रह का पात्र हूं, और कृष्ण को ही अपना स्वामी मानता है, उनको ही अपना आराध्य मानता है और भगवान को प्रसन्न करने की उसकी चेष्टाएं होती हैं, प्रसन्न करना चाहता है। तो इसमें दो चीजें आती है प्रमुख, क्या कि भगवान के रूप के प्रति आसक्ति, फर्म आसक्ति, अटैचमेंट, और दूसरा क्या है, कृष्ण के अलावा किसी और से प्रीति नहीं, उसमें है भोग त्याग है, शांत में भोग त्याग है। लेकिन यहां क्या चीज है, भगवान के प्रति, उनके पर्सनल फॉर्म के प्रति आसक्ति। तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति अटैचमेंट, अटैचमेंट टू हिज टुवर्ड्स हिज पर्सनल फॉर्म। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने इसका उदाहरण प्रेम भक्ति चंद्रिका में दिया है, बहुत हनुमान को बहुत ग्लोरीफाई किया नरोत्तम दास ठाकुर ने कि हाँ इसका उदाहरण तो हनुमान है, वो कहा करते थे। तो आगे हम देखेंगे कि इनमें फिर रस में फिर कैसे अलग अलग डिवोटीज,
भगवान के रूप के प्रति
कृष्ण के अलावा प्रीति नहीं, किसी और से प्रीति नहीं। तो थर्ड क्या है, सख्य रति। ये सख्य रति, सख्य रति का मतलब है कि जो भक्त है इतना गहन आकर्षण होता है कि वो मुकुंद को अपने तुल्य मानने लगता है। ये तो मेरा यार है ना, ये तो मेरा मित्र है। तो ये कौन करता, किसके अंदर ये रति होती है, विशेष रूप से ब्रज के जो सखागण आदि है, उम्र में भगवान से लगभग एक समान ही होते हैं, तो ये इस प्रकार का जो प्रीति है वो भगवान के प्रति होती है। प्रयास आदि करते हैं, भगवान का हंसी उड़ाते हैं, चोरी चोर बन जाते हैं और भगवान का मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो इतना बड़ा हो गया, आपका मैरिज नहीं हुआ अभी तक, आप ऐसे चोरी करते रहते, इसलिए कोई आपका आपको लड़की नहीं दे रहा है शादी करने के लिए। हाँ, तो ये सब उदाहरण आए हैं कैसे उनके मित्रगण हंसी उड़ाते थे और खुलकर भगवान हंसते थे। परिहास, प्रहास और अयंत्रणा, बिना कंट्रोल के उनके साथ ये जो भक्त है वो प्रकट करता है। और चौथी रति क्या है, फोर्थ है वात्सल्य रति, फ्रेंडशिप, या जस्ट लाइक अ फ्रेंड, टोटली मग्न हो जाते हैं उनसे, उनके मित्रता में। और वात्सल्य रति क्या है कि जो भगवान को अपने अपने मतलब आश्रित स्वीकार करते हैं, मतलब भगवान मेरे अनुग्रह के पात्र हैं, ये भावना। जैसे दास्य रति में क्या था कि मैं नहीं, दास्य में क्या कि मैं अनुग्रह चाहता हूं। अभी हमारी जो प्रेयर की स्टाइल है वो क्या है, हर समय मुझे अनुग्रह चाहिए, आपका प्रेम ये चाहिए, कृपा चाहिए। तो लेकिन इसका क्या है,
भगवान मेरे अनुग्रह,
मेरे अनुग्रह के पात्र है, मैं उनको खिलाऊंगा नहीं, खिलाऊंगी नहीं तो वो भूखे रह जाएंगे, मेरे कृपा पर वो निर्भर है। यशोदा नंद आदि उनके जो उपनंद वगैरह, तो वो गुरुजन, माता पिता, भगवान के बड़े भाई बलराम आदि कहते मुझे इनका देखभाल करना है। हाँ, तो ये जो भावना है ये भगवान के प्रति है, तो ये इसको वात्सल्य रति कहा जाता है। I don't know. तो मतलब भगवान को वो आज्ञा देते हैं, आज्ञा देने की भावना, या फिर आशीर्वाद देते हैं, भगवान उनके चरण आदि छूते हैं, भगवान को कहते सुखी रहे बेटा, महान बने, तो ये वात्सल्य रति है गुरुजन आदि, तो ये अनुग्रहमयी है। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि दास्य रति से टोटली ये क्या है, उल्टा है। और क्या क्या कार्य होते हैं, भगवान का लालन पालन, उनका आशीर्वाद, उनके चुबुक स्पर्शन, उनके गालों को क्या करते हैं लोग, खींचते हैं। हाँ, जैसे इसमें वो भावना नहीं है जय जगदीश हरे, नहीं, हम तो पूरा जय जगदीश हरे, वहां तो भगवान को मारते भी हैं, पिटाई भी करते हैं, तो ये वात्सल्य रति है। हाँ, इसलिए महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण ने कहा, माता मोरे पुत्र भावे करे न बरसान, आते ही न ज्ञाने करे लालन पालन। माता मोरे पुत्र भावे करे न बरसान, माता पुत्र के भाव में मेरे मुझे डांटती हैं और आते ही न ज्ञाने, वो समझते कि इसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो बताते कि अरे बाबा रोटी खाओ या मिट्टी, कौन सा खाना है वो बताते, रोटी खाओ मिट्टी मत खाओ, मतलब आते ही न ज्ञाने करे लालन पालन, वो देखते है कि मुझ में ज्ञान नहीं है हाँ तो मेरा लालन पालन करती है। और जो चौथी रति क्या है, मधुरा रति, मधुरा रति जो मृगाक्षियों में है, मृगाक्षिया कौन है, ब्रज की जो गोपियां आदि हैं, या फिर जो भगवान की, ये मधुरा रति दो प्रकार से आती है ना, एक स्वकिया है और एक है परकिया, भावे यहां ब्रजेते प्रचार, हाँ तो ये मधुर रति भी दो प्रकार से हो जाती है, स्वकिया और परकिया। तो इनमें प्रधानता क्या होती है, मिलन की प्रधानता होती है, भगवान के साथ गुह्य भाषण गुह्य लीलाएं करना, और इसके कारण जो भाव उत्पन्न होते हैं वो मधुर रति है, और इसी को मधुर रति कहा जाता है। इसकी चेष्टाएं हैं कि भगवान के प्रति कटाक्ष डालना या फिर मधुर वचन बोलना, लॉन्ग ग्लांस साइड ग्लांस या समथिंग नो, ये जब होता है ये मधुरा रति है। और यही तो जो चार चीजें हैं इनमें, हाँ ये चार चीजें ऐड हो जाती हैं इन सारे रतियों में, हर एक रति में वो चार चीजें ऐड होती हैं, कौन सी चार चीजें, विभाव अनुभाव सात्विक भाव व्याभिचारी भाव, ये ऐड होते हैं रतियों में तो फिर क्या बन जाता है, रस बन जाता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष शिक्षा दे रहे हैं। तो कल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे इन रतियों में ये चार चीजें ऐड होती हैं और फिर कैसे रस में परिणत हो जाती है वो चीजें। इस प्रकार से समय तो काफी हो गया, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये जो टफ सब्जेक्ट है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं रूप गोस्वामी को। तो धीरे धीरे हम जो चीजें समझ में आएगी भगवत कृपा से उनका वर्णन करते रहेंगे ताकि हमारी शुद्धि बने रहे। शांतदास्य सख्य वात्सल्य मधुर रस नाम कृष्ण भक्ति रसम दे ए पंच प्रधान। तो इनमें पांच प्रधान है, ये रति हो गई और रस कौन से है, शांतदास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य रस,
तो ये रति ही रस बन जाते हैं।
हाँ तो वो उसको हम अभी कल डिस्कस करेंगे।
पहले एक बार
चैतन्य चरितामृत के श्रील प्रभुपाद के रूप गोस्वामी पाद के निताय गौर प्रेमानंदे। हाँ
इसको दोबारा वो करवा दे।